का था, रूह वही रूप नया।
गाथा पर आप सुन रहे हैं कहानी वाटचू का पहला भाग। वाटचू भीष्म साहनी। वाटचू भीष्म साहनी तभी दूर से वाटचू आता दिखाई दिया। नदी के किनारे लाल मंडी की सड़क पर धीरे धीरे डोलता सा चला आ रहा था। धूसर रंग का चोगा पहने था और दूर से लगता था कि बौद्ध भिक्षुओं की ही भांति उसका सिर भी घुटा हुआ है। पीछे शंकराचार्य की ऊंची पहाड़ी थी और ऊपर स्वच्छ नीला आकाश। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे सफेद के पेड़ों की कतारें थीं। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे वाटचू इतिहास के पन्नों पर से उतर कर आ गया है। प्राचीन काल में इसी भांति देश विदेश से आने वाले चीवरधारी भिक्षु पहाड़ियों और घाटियों को लांग कर भारत के आया करते थे। अतीत के ऐसे ही रोमांचकारी धुंधले से मुझे वाटचू भी चलता हुआ नजर आया। जब से वो श्रीनगर आया था, बौद्ध विहार के खंडहरों और संग्रहालयों में घूम रहा था। इस समय भी वो लाल मंडी के संग्रहालय में से निकलकर आ रहा था, जहां बौद्ध काल के अनेक अवशेष रखे हैं। उसकी मनः स्थिति को देखते हुए लगता वो सचमुच ही वर्तमान से कटकर अतीत के ही किसी कालखंड में विचर रहा था। बोधिसत्वों की भेंट हो गई। पास आने पर मैंने चुटकी ली। वो मुस्कुरा दिया, हल्की टेढ़ी सी मुस्कान, जिसे मेरी मौसेरी बहन डेढ़ दांत की मुस्कान कहा करती थी, क्योंकि मुस्कुराते वक्त वाटचू का ऊपर का होंठ केवल एक ओर से थोड़ा सा ऊपर उठता था। संग्रहालय के बाहर बहुत सारी मूर्तियां रखी हैं, मैं वही देखता रहा। उसने धीमे से कहा, फिर वो सहसा भाव को उठा। एक मूर्ति के केवल पैर ही पैर बचे हैं। मैंने सोचा आगे कुछ कहेगा, परंतु वो इतना भाव विहल हो उठा था कि उसका गला रुंध गया और उसके लिए बोलना असंभव हो गया। हम एक साथ घर की ओर लौटने लगे। महाप्राण के पैर भी पहले दिखाए जाते थे, उसने कांपती सी आवाज में कहा और अपना हाथ मेरी कोहनी पर रख दिया। उसके हाथ का हल्का सा कंपन धड़कते दिल की तरह महसूस हो रहा था। आरंभ में महाप्राण की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी ना, तुम तो जानते हो, पहले स्तूप के नीचे केवल पैर ही पैर दिखाए जाते थे, मूर्तियां तो बाद में बनाई जाने लगी थी। जाहिर है बोधिसत्व के पैर देखकर उसे महाप्राण के पैर याद आ गए थे और वो भावुक हो उठा था। कुछ पता नहीं चलता था कि कौन सी बात किस वक्त वाटचू को पुलकाने लगे, किस वक्त वो गदगद होने लगे। तुमने बहुत देर कर दी, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं चिनारों के नीचे भी तुम्हें खोज आया हूं, मैंने कहा। मैं संग्रहालय में था। वो तो ठीक है, पर 2 बजे तक हमें हब्बा कदल पहुंच जाना चाहिए, वरना जाने का कोई लाभ नहीं है। उसने छोटे छोटे झटकों के साथ 3 बार सिर हिलाया और कदम आगे बढ़ाए। वाटचू भारत में मतवाला बना घूम रहा था। वो महाप्राण के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा नंगे पांव कर चुका था, सारा रास्ता हाथ जोड़े हुए। जिस जिस दिशा में महाप्राण के चरण उठे थे, वाटचू मंत्रमुग्ध सा उसी उसी दिशा में घूम आया था। सारनाथ में, जहां महाप्राण ने अपना पहला प्रवचन दिया था, और 2 मृगशावक मंत्रमुग्ध से झाड़ियों में से निकलकर उनकी ओर देखते रह गए थे। वाटचू एक पेपल के नीचे घंटों नतमस्तक बैठा रहा और यहां तक कि उसके कथानुसार उसके मस्तक से अस्फुट से वाक्य गूंजने लगे थे, और उसे लगा था जैसे महाप्राण का पहला प्रवचन सुन रहा है। वो इस भक्तिपूर्ण कल्पना में इतना गहरा डूब गया था कि सारनाथ में ही रहने लगा था। गंगा की धार और उसको वो 10 शताब्दियों के धुंधलके में पावन जल प्रवाह के रूप में देखता। जब से श्रीनगर आया था, बर्फ के ढके पहाड़ों की चोटियों की ओर देखते हुए अक्सर मुझसे कहता था, वो रास्ता तो ल्हासा को जाता है ना, उसी रास्ते बौद्ध ग्रंथ तिब्बत भेजे गए थे। वो उस पर्वतमाला को भी पुण्य पावन मानता था, क्योंकि उस पर बिछी पगडंडियों के रास्ते बौद्ध भिक्षु तिब्बत की ओर गए थे। वाटचू कुछ वर्षों पहले वृद्ध प्रोफेसर तान शान के साथ भारत आया था। कुछ दिनों तक तो वो उन्हीं के साथ रहा और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करता रहा। फिर प्रोफेसर शान चीन लौट गए और वो यहीं बना रहा और किसी बौद्ध सोसाइटी के अनुदान प्राप्त करके सारनाथ में आकर बैठ गया। भावुक काव्यमयी प्राकृतिक जीवन, जो प्राचीनता के मनमोहक वातावरण में विचरते रहना चाहता था, वो यहां तथ्यों की खोज करने कहीं पर आया हुआ था। वो तो बोधिसत्वों की मूर्तियों को देखकर गदगद होने के लिए आया था। महीने भर से संग्रहालयों से चक्कर काट रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि बौद्ध धर्म की किस शिक्षा से उसे सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है। ना तो वो किसी तथ्य को पाकर उत्साह से खिल उठता है और ना ही कोई संशय परेशान करता। वो भक्त अधिक और जिज्ञासु कम था। मुझे याद नहीं कि उसने हमारे साथ कभी खुलकर बात की हो या किसी विषय पर अपना मत पेश किया हो। उन दिनों मेरे और मेरे दोस्तों के बीच घंटों बहसें चला करती, कभी देश की राजनीति के बारे में, कभी धर्म के बारे में, लेकिन वाटचू इनमें कभी भाग नहीं लेता था। वो सारा वक्त धीमे धीमे मुस्कुराता रहता और कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा रहता। उन दिनों देश में वलवलों सा सैलाब उठ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन कौन सा रुख पकड़ेगा, क्रियात्मक स्तर पर तो हम लोग कुछ करते कराते नहीं थे, लेकिन भावनात्मक स्तर पर हम उसके साथ बहुत जुड़े हुए थे। इस पर वाटचू की तटस्थता कभी हमें अखरने लगती तो कभी अचंभे में डाल देती। वो हमारे देश की गतिविधियों में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लेता था। उससे उसके अपने देश के बारे में भी पूछो तो मुस्कुराकर सिर हिलाता रहता। कुछ दिनों से श्रीनगर की हवा भी बदली हुई थी। कुछ माह पहले यहां गोली चली थी। कश्मीर के लोग महाराजा के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और अब कुछ दिनों से शहर में एक नई उत्तेजना पाई जाती थी। नेहरू जी श्रीनगर आने वाले थे और उनका स्वागत करने के लिए नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज ही दोपहर को नेहरू जी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। नदी के रास्ते नावों के जुलूस की शक्ल में उन्हें लाने की योजना थी और इसी कारण मैं वाटचू को खोजता हुआ उस ओर निकला था। हम घर की ओर बढ़े जा रहे थे जब सहसा वाटचू ठिटक कर खड़ा हो गया। क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है? जैसा तुम कहो। मुझे धक्का सा लगा। ऐसे समय में जब लाखों लोग नेहरू जी के स्वागत के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वाटचू का ये कहना कि अगर वो साथ ना जाए तो कैसा रहे, मुझे सचमुच बुरा लगा। लेकिन फिर स्वयं ही कुछ सोचकर उसने अपने आग्रह को दोहराया नहीं और हम घर की ओर साथ चले जाने लगे। कुछ देर के बाद हब्बा गदल के पुल के नीचे लाखों की भीड़ में हम लोग खड़े हुए थे, मैं, वाटचू तथा मेरे दो तीन मित्र। चारों ओर जहां तक नजर जाती लोग ही लोग थे। मकानों की छतों पर, पुल पर, नदी के ढलवा किनारों पर। मैं बार बार कनखियों से वाटचू के चेहरे की ओर देख रहा था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है, कि हमारे दिल में उठने वाले वलवलों का उस पर कोई असर हुआ है। यूं भी ये मेरी आदत सी बन गई है, जब भी कोई विदेशी साथ में होता है तो मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करता रहता हूं कि क्या हमारे रीति रिवाज, हमारे जीवन यापन के बारे में उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। वाटचू अंधमुंदी आंखों से सामने का दृश्य देख रहा था। जिस समय नेहरू जी की नाव सामने आई तो जैसे मकानों की छतें हिल उठी। राजहंस शक्ल की सफेद नाव में नेहरू जी स्थानीय नेताओं के साथ खड़े हाथ हिला रहे थे। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी कर रहे थे और हवा में ही फूल बिखर गए। मैंने पलटकर वाटचू के चेहरे की ओर देखा। वो पहले की तरह निश्चित सा सामने का दृश्य देखे जा रहा था। आपको नेहरू जी कैसे लगे, मेरे एक साथी ने वाटचू से पूछा। वाटचू ने अपनी टेढ़ी से आंखें उठाकर चेहरे की ओर देखा, फिर अपनी डेढ़ दांत की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। वाटचू मामूली से हिंदी और अंग्रेजी जानता था, अगर तेज बोलो तो उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं था। नेहरू जी की नाव दूर जा चुकी थी, लेकिन नावों का जुलूस अभी भी चलता जा रहा था। जब वाटचू सहसा मुझसे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए संग्रहालय में जाना चाहूंगा, इधर से रास्ता जाता है, मैं स्वयं चला जाता हूं, और बिना कुछ कहे एक बार अधमिची आंखों से मुस्काया और हल्के से हाथ हिलाकर मुड़ गया। हम सभी हैरान रह गए। इसे सचमुच जुलूस में कोई रुचि नहीं होगी जो इतनी जल्दी संग्रहालय की ओर अकेला चल दिया। यार, किस बूदम को ढाला हो यहां पर, ये क्या चीज है, कहां से पकड़ कर लाए हो इसे, मेरे एक मित्र ने कहा। बाहर का रहने वाला है, इसे हमारी बातों में कैसे रुचि हो सकती है, मैंने सफाई देते हुए कहा। वाह, देश में इतना कुछ हो रहा है और इसे रुचि ना हो। वाटचू अब तक दूर जा चुका था और भीड़ में से निकलकर पेड़ों की कतार के नीचे आंखों से ओझल होता जा रहा था। मगर ये है कौन? दूसरा एक मित्र बोला। ना ये बोलता है ना चहकता है, कुछ पता नहीं चलता, हंस रहा है या फिर रो रहा है, सारा वक्त एक कोने में दुबककर बैठा रहता है। नहीं नहीं, बहुत ही समझदार आदमी है ये, पिछले 5 सालों से यहाँ पर रह रहा है, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता है, मैंने फिर उसकी सफाई देते हुए कहा। मेरी नजर में इस बात का बड़ा महत्व था कि वो बौद्ध ग्रंथ बांचता है और उन्हें बांचने के लिए इतनी दूर से आया है। अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई, वाह जी, जुलूस को छोड़कर म्यूजियम की ओर चल दिया। सीधी सी बात है यार, मैंने जोड़ा, इसे यहाँ भारत का वर्तमान खींचकर नहीं लाया है, भारत का अतीत लाया है। ह्यून सांग भी तो यहाँ बौद्ध ग्रंथ ही बांचने आया था, ये भी शिक्षार्थी है, बौद्ध मत में इसकी रुचि है। घर लौटते हुए हम लोग सारा रास्ता वाटचू की ही चर्चा करते रहे। अजय का मत था कि अगर वो 5 साल भारत में काट गया है तो अब वो जिंदगी भर यहीं रहेगा। अब आ गया है तो लौट कर नहीं जाएगा, भारत में एक बार परदेशी आ जाए तो लौटने का नाम नहीं लेता। भारत देश वो दलदल है जिसमें एक बार बाहर के आदमी का पांव पड़ जाए तो धंसता ही चला जाता है, निकलना चाहे तब भी नहीं निकल सकता, दिलीप ने मजाक में कहा। न जाने कौन सा कमल का फूल तोड़ने के लिए इस दलदल में घुसा है, हमारा देश हम हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं, बाहर के लोगों को तो काई पसंद होगा, मैंने कहा। पसंद क्यों ना होगा, यहाँ थोड़े में गुजर हो जाती है, सारा वक्त धूप खिली रहती है, फिर बाहर के आदमी लोग परेशान भी तो नहीं करते, जहाँ बैठा वहीं पर बैठा रहने देते हैं, इस पर उन्हें तुम जैसे झुंडू भी मिल जाते हैं जो उनका गुणगान करते हैं और उनकी आव भगत करते हैं, तुम्हारा वाटचू यहीं पर मरेगा देख लेना। हमारे यहाँ उन दिनों मेरी छोटी मौसेरी बहन ठहरी हुई थी, वही जो वाटचू की मुस्कान को डेढ़ दांत कहकर कहती थी। चुलबुली सी लड़की बात बात पर ठिठोली करती रहती। मैंने 2-1 बार वाटचू को कनखियों से उसकी ओर देखते हुए पाया था, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो सभी को कनखियों से ही देखता था। पर उस शाम नीलम मेरे पास आई और बोली, आपके दोस्त ने मुझे उपहार दिया है, प्रेम उपहार। मेरे कान खड़े हो गए, क्या दिया है? झूमरों का जोड़ा। और उसने दोनों मुठ्ठियां खोल दी जिसमें चांदी के कश्मीरी चलन के 2 सफेद झूमर चमक रहे थे, और फिर वो दोनों झूमर अपने कानों के पास ले जाकर बोली, कैसे लगते हैं? मैं हदबुद्धि सा नीलम की ओर देख रहा था, उसके अपने कान कैसे भूरे भूरे हैं। नीलम ने हंसकर कहा, किसके? मेरे इस प्रेमी के। तुम्हें उसके भूरे कान पसंद है? बहुत ज्यादा, जब शर्माता है तो ब्राउन हो जाते हैं, गहरे ब्राउन। और नीलम खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़कियां कैसे उस आदमी के प्रेम का मजाक उड़ा सकती हैं जो उन्हें पसंद ही ना हो, या कहीं नीलम मुझे बना तो नहीं रही है? पर मैं सूचना से बहुत विचलित नहीं हुआ था। नीलम लाहौर में पढ़ती थी और वाटचू सारनाथ में रहता था, और अब वो हफ्ते भर में श्रीनगर से वापस जाने वाला था। इस प्रेम का अंकुर अपने आप ही जल भुन जाएगा। नीलम, ये झूमर तो तुमने उससे लिए ना, पर इस प्रकार की दोस्ती अंत में उसके लिए दुखदायी होगी, बने बनाए कुछ नहीं होगा। वाह भैया, तुम भी कैसे दकियानूस हो, मैंने भी चमड़े का एक राइटिंग पैड दिया है उसको उपहार में, मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने उसे दे दिया, जब लौटेगा तो प्रेम पत्र लिखने में उसे आसानी होगी। वो क्या कहता था? कहता क्या था, सारा वक्त उसके हाथ कांपते रहे, चेहरा कभी लाल होता रहा कभी पीला, कहता था मुझे पत्र लिखना, मेरे पत्रों का जवाब देना, और क्या कहेगा बेचारा भूरे कानों वाला। मैंने ध्यान से नीलम की ओर देखा, पर उसकी आंखों में मुझे हंसी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़कियां दिल की बात छिपाना खूब जानती हैं। मुझे लगा नीलम उसे बढ़ावा दे रही है, उसके लिए वो खिलवाड़ था, लेकिन वाटचू जरूर इसका दूसरा ही अर्थ निकालेगा। इसके बाद मुझे लगा कि वाटचू अपना संतुलन खो रहा है। उसी रात मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर मैदानों में चिनारों की पांत की ओर देख रहा था, जब चांदनी में कुछ दूरी पर पेड़ों के नीचे मुझे वाटचू टहलता हुआ दिखाई दिया। वह अक्सर ही रात को देर तक पेड़ों के नीचे टहलता रहता था, पर आज वह अकेला नहीं था। नीलम भी उसके साथ ठुमक ठुमक कर चलती जा रही थी। मुझे नीलम पर गुस्सा आया। लड़कियां कितनी जालिम होती हैं। ये जानते हुए कि इस खिलवाड़ से वार्चू की बेचैनी बढ़ेगी, वो उसे बढ़ावा दिए जा रही थी। दूसरे रोज खाने की मेज पर नीलम फिर उसके साथ ठिठोली करने लगी। किचन में से एक चौड़ा सा एल्यूमिनियम का डिब्बा उठा लाई। उसका चेहरा तपे तांबे के जैसा लाल हो रहा था। आपके लिए रोटियां लाई हूं और आलू भी बना लाई हूं। आम के अचार की फांक भी रखी है। आप जानते ना फांक किसे कहते हैं? एक बार कहके तो बताओ, फांक कहो वाटचू जी, फांक। उसने नीलम की ओर खोई खोई आंखों से देखा और बोला, बांक। हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। बांक नहीं, फांक। फिर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। नीलम ने डिब्बा खोला, उसमें से आम के अचार का टुकड़ा निकालकर उसे दिखाते हुए बोली, ये है फांक, फांक कहते हैं इसे। और उसे वारचू की नाक के पास ले जाकर बोली, इसे सूंघने पर मुंह में पानी भर आता है। आया मुंह में पानी? आप कहो फांक। नीलम, क्या फिजूल की बातें कर रही हो, बैठो आराम से, मैंने डांटते हुए कहा। नीलम बैठ गई, पर उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। बड़े आग्रह से वारचू से कहने लगी, बनारस जाकर हमें भूल नहीं जाइएगा, हमें खत जरूर लिखिएगा, मगर किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच भी मत कीजिएगा। वाटचू शब्दों के अर्थ तो समझ लेता था, लेकिन उसके व्यंग की ध्वनि वो नहीं पकड़ पाता था। वो अधिकाधिक विचलित महसूस कर रहा था। भेड़ की खाल की जरूरत हो या नमदा या अखरोट? नीलम, क्यों भैया, भेड़ की खाल पर बैठकर ग्रंथ बाँचेंगे? वाटचू के कान लाल होने लगे। शायद पहली बार उसे भास होने लगा था कि नीलम ठिठोली कर रही है। उसके कान सचमुच भूरे रंग के हो रहे थे, जिनका नीलम मजाक उड़ाया करती थी। नीलम जी, आप लोगों ने मेरा बड़ा अतिथि सत्कार किया है, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। सब चुप हो गए। नीलम भी झेप सी गई। वाटचू ने जरूर ही उसकी ठिठोली से समझ लिया होगा। उसके मन को जरूर ठेस लगी होगी, पर मेरे मन में यह विचार भी उठा कि एक तरह से यह अच्छा ही है कि नीलम के प्रति उसकी भावना बदल जाए, वरना उसे ही सबसे अधिक परेशानी होगी। शायद वाटचू अपनी स्थिति को जानते हुए समझते हुए भी एक स्वाभाविक आकर्षण की चपेट में आ गया था। भावुक व्यक्ति का अपने आप पर कोई काबू नहीं होता। वो पछाड़ खाकर गिरता है, तभी अपनी भूल को वो समझ पाता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में वो रोज कोई ना कोई उपहार लेकर आने लगा। एक बार मेरे लिए भी एक चोगा लेकर आया और बच्चों की तरह जिद करने लगा कि मैं और वो अपना अपना चोगा पहनकर एक साथ घूमने जाएंगे। संग्रहालय में वो अब भी जाता था। दो एक बार नीलम को भी अपने साथ ले गया और लौटने पर सारी शाम नीलम बोधिसत्वों की खिल्ली उड़ाती रही थी। मैं मन ही मन नीलम के इस व्यवहार का स्वागत ही करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वाटचू की कोई भावना हमारे घर में जड़ जमा पाए। सप्ताह बीत गया और वाटचू सारनाथ लौट गया। वाटचू के चले जाने के बाद उसके साथ मेरा संपर्क वैसा ही रहा जैसा आमतौर पर एक परिचित व्यक्ति के साथ रहता है। गाहे बगाहे कभी खत आ जाता, कभी किसी आते जाते व्यक्ति से उसकी सूचना मिल जाती। वो उन लोगों में से था जो बरसों तक औपचारिक परिचय की परिधि पर ही डोलते रहते हैं, ना कि परिधि लांघकर अंदर आते हैं और ना ही पीछे हटकर आंखों से ओझल होते हैं। मुझे उतनी ही जानकारी रही कि उसकी समतल और बंधी बंधाई दिनचर्या में कोई अंतर नहीं था। कुछ देर तक मुझे कौतूहल सा बना रहा कि नीलम और वाटचू के बीच बात आगे बढ़ी या नहीं, लेकिन लगा कि प्रेम भी वाटचू के जीवन पर हावी नहीं हो पाया। बरस और साल बीतते गए। हमारे देश में उन दिनों बहुत कुछ घट रहा था। आए दिन सत्याग्रह होते, बंगाल में दुर्भिक्ष फूटा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सड़कों पर गोलियां चली, बंबई में नाविकों का विद्रोह हुआ, देश में खूनरेजी हुई, फिर देश का बंटवारा हुआ और सारा वक्त वाटचू सारनाथ में ही बना रहा। वो अपने में संतुष्ट जान पड़ता था। कभी लिखता कि तंत्र ज्ञान का अध्ययन कर रहा है, कभी पता चलता कि कोई पुस्तक लिखने की योजना बना रहा है। इसके बाद मेरी मुलाकात वाटचू से दिल्ली में हुई। ये उन दोनों की बात है जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा पर आने वाले थे। वाटचू अचानक सड़क पर मुझे मिल गया और मैं उसे अपने घर ले आया। मुझे लगा कि चीन के प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना मिली है, तो मुझे उसकी मनोवृत्ति पर अचंभा हुआ। उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही था, पहले की तरह हौले डोले अपनी डेढ़ दांत की मुस्कान मुस्कुराता रहा। वैसा ही निश्चेष्ट असंप्रक्त। इसी बीच उसने कोई पुस्तक अथवा लेखादि भी नहीं लिखे थे। मेरे पूछने पर इस काम में उसने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। तंत्र ज्ञान की चर्चा करते समय भी वो बहुत चहका नहीं, दो एक ग्रंथों के बारे में बताता रहा जिसमें वो कुछ टिप्पणियां लेता रहा था। अपने किसी लेख की भी चर्चा नहीं की उसने जिस पर वो अभी काम कर रहा था। नीलम के साथ उसकी चिट्ठी पत्री चलती रही। उसने बताया हालांकि नीलम कब की ब्याही जा चुकी थी और दो बच्चों की मां बन चुकी थी। समय की गति के साथ हमारी मूल धारणाएं भले ही ना बदलें पर उनके आग्रह और उत्सुकता में स्थिरता सी आ गई थी। पहले जैसी भाव विहलता नहीं थी। बोधि सत्वों के पैरों पर अपने प्राण नशावर नहीं करता फिरता था लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट था। पहले की ही भांति थोड़ा खाता, थोड़ा पढ़ता, थोड़ा भ्रमण करता और थोड़ा सोता था और दूर लड़कपन के छुटपुटे में किसी भावावेश में चुने गए अपने जीवन पथ पर कछुए की चाल मजे से चलता आ रहा था। खाना खाने के बाद हमारे बीच बहस छिड़ गई। सामाजिक शक्तियों को समझे बिना तुम बौद्ध धर्म को भी कैसे समझ पाओगे? ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। कोई चीज जीवन से अलग नहीं है। तुम जीवन से अलग होकर धर्म को कैसे समझ सकते हो? कभी वो मुस्कुराता, कभी सिर हिलाता और सारा वक्त दार्शनिकों की तरह मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। मुझे लग रहा था कि मेरे कहे का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं चिकने घड़े पर पानी उडेले जा रहा हूं। हमारे देश में ना सही, तुम अपने देश में तो जीवन रुचि लो, इतना जानो समझो कि वहां पर हो क्या रहा है। इस पर भी वो सिर हिलाता और मुस्कुराता रहा। मैं जानता था कि एक भाई को छोड़कर चीन में उसका कोई है नहीं। 1929 में वहां पर कोई राजनीतिक उथल पुथल हुई थी। उसमें उसका गांव जला डाला गया था। सब सगे संबंधी मर गए थे या भाग गए थे। ले देकर एक भाई बचा था और वो पैकिंग के निकट किसी गांव में रहता था। बरसों से वाटचू का संपर्क उसके साथ टूट चुका था। वाटचू पहले गांव के स्कूल में पढ़ता रहा था, बाद में पैकिंग के एक विद्यालय में जाने लगा था। वहीं से वो प्रोफेसर शान के साथ भारत चला आया था। सुनो वाटचू, भारत और चीन के बीच बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं और दोनों देशों के बीच संपर्क स्थापित हो रहा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अध्ययन का जो काम तुम अभी कर रहे हो अलग अलग रह करते हो, वहीं अब तुम अपने देश के मान्य प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार हो सकते हो। तुम्हारी सरकार तुम्हारे अनुदान का प्रबंध करेगी। अब तुम्हें अलग थलग पड़े रहना नहीं पड़ेगा। तुम 15 साल से अधिक समय भारत में रह रहे हो, अंग्रेजी और हिंदी भाषा जानते हो, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते रहे हो। तुम दोनों देशों के सांस्कृतिक संपर्क में एक बहुमूल्य कड़ी बन सकते हो। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। सचमुच उसे कुछ सुविधाएं मिल सकती थी, क्यों ना उनसे लाभ उठाया जाए। दोनों देशों के बीच पाई जाने वाली सद्भावना से वो भी प्रभावित हुआ था। उसने बताया कि कुछ ही दिनों पहले अनुदान की रकम लेने जब वो बनारस गया तो सड़कों पर राह चलते लोग उसे गले मिल रहे थे। मैंने उसे मशवरा दिया कि कुछ समय के लिए जरूर अपने देश लौट जाए और वहां होने वाले विराट परिवर्तनों को देखे और समझे कि सारनाथ में अलग थलग बैठे रहने से उसे कुछ लाभ नहीं होगा। वो सुनता रहा, सिर हिलाता और मुस्कुराता रहा, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं हो पाया कि उस पर कोई असर हुआ या नहीं। लगभग 6 महीने के बाद उसका पत्र आया कि वो चीन जा रहा है। मुझे बड़ा संतोष हुआ। अपने देश में जाएगा तो धोबी के कुत्ते वाली उसकी स्थिति खत्म हो जाएगी, कहीं का तो होकर रहेगा, उसके जीवन में नई स्फूर्ति आ जाएगी। उसने लिखा कि वो अपना एक ट्रंक सारनाथ में छोड़े जा रहा है जिसमें उसकी कुछ किताबें और शोध के कागज आदि रखे हैं। ये बरसों तक भारत में रह चुकने के बाद वो अपने को भारत का ही निवासी मानता है। वो शीघ्र ही लौट आएगा और फिर अपना अध्ययन कार्य करने लगेगा। मैं मन ही मन हंस दिया। एक बार अपने देश में गया तो लौट कर नहीं आने वाला। चीन में वो लगभग 2 वर्षों तक रहा। वहां से उसने मुझे पेकिंग के प्राचीन राजमहल का चित्रकार्ड भेजा, दो एक पत्र भी लिखे, पर उनसे मना स्थिति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। उन दिनों चीन में भी बड़े बलवले हो रहे थे। बड़ा जोश था और उस जोश की लपट में लगभग सभी लोग थे। जीवन नई करवट ले रहा था। लोग काम करने जाते तो टोलियां बनाकर गाते हुए, लाल ध्वज हाथ में उठाए हुए। वाटचू सड़क के किनारे खड़ा उन्हें देखता रहता। अपने संकुचित स्वभाव के कारण वो टोलियों के साथ गाते हुए तो नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें जाते देखकर हैरान सा खड़ा रहता। मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसे अपना भाई तो नहीं मिला, लेकिन एक पुराना अध्यापक, दूर पार की उसकी मौसी और दो एक परिचित मिल गए थे। वो अपने गांव गया। गांव में बहुत कुछ बदल गया था। स्टेशन से घर की ओर जाते हुए उसका एक सहयात्री उसे बताने लगा, वहां उस पेड़ के नीचे जमींदार के सभी कागज, सभी दस्तावेज जला डाले गए थे और जमींदार हाथ बांधे खड़ा रहा था। वाटचू ने बचपन में जमींदार का एक बड़ा घर देखा था। उसकी रंगीन खिड़कियां उसे अभी भी याद थीं। दो एक बार जमींदार के बग्घी को भी कस्बे की सड़कों पर जाते हुए देखा था। वो अब घर ग्राम प्रशासन केंद्र बना हुआ था और बहुत कुछ बदल भी गया था, पर यहां पर भी उसके लिए वैसी ही स्थिति थी जैसी भारत में रही थी। उसके मन में उछाल नहीं उठता था। दूसरों का उत्साह उसके दिल पर फिसल फिसल जाता था। वो यहां भी दर्शक ही बना घूमता फिरता। शुरू शुरू के दिनों में उसकी आवभगत भी हुई। उसके पुराने अध्यापक की पहलकदमी पर उसे स्कूल में आमंत्रित किया गया। भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उसे सम्मानित भी किया गया। वहां वाटचू देर तक लोगों को भारत के बारे में बताता रहा। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे, रीति रिवाज के बारे में, तीर्थों, मेलों, पर्वों के बारे में। वाटचू केवल उन्हीं प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर दे पाता जिनके बारे में भारत में रहते हुए भी वो कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद चीन में बड़ी छलांग की मुहिम जोर पकड़ने लगी। उसके गांव में भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। एक दिन सुबह उसे भी रद्दी लोहा बटोरने के लिए एक टोली के साथ भेज दिया गया था। दिन भर वो लोग बड़े गर्व से दिखा दिखा कर ला रहे थे और सांझे ढेर पर डाल रहे थे। रात के वक्त आग के लपलपाते शोलों के बीच उस ढेर को पिघलाया जाने लगा। आग के इर्द गिर्द बैठे लोग क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। सभी लोग एक स्वर में सहगान में भाग ले रहे थे। अकेला वाटचू मुंह बाए बैठा हुआ था। चीन में रहते धीरे धीरे वातावरण में एक तनाव सा आने लगा और एक झुटपटा सा घिरने लगा। वो एक रोज एक आदमी नीले रंग का कोट और नीले रंग की पतलून पहने उसके पास आया और उसे अपने साथ ग्राम प्रशासन केंद्र में ले गया। रास्ते भर वो आदमी चुप बना रहा। केंद्र में पहुंचने पर उसने पाया कि एक बड़े से कमरे में पांच व्यक्तियों का एक दल मेज के पीछे बैठा उसकी राह देख रहा है। जब वाटचू उनके सामने बैठ गया तो वे बारी बारी से उसके भारत निवास के बारे में पूछने लगे। तुम भारत में कितने वर्षों तक रहे, वहां पर क्या करते थे, कहां कहां घूमे, आदि आदि। फिर बौद्ध धर्म के प्रति वाटचू की जिज्ञासा के बारे में जानकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम क्या सोचते हो, बौद्ध धर्म का भौतिक आधार क्या है? सवाल वाटचू की समझ में नहीं आया। उसने आंखें मिचमिचाई। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दृष्टि से तुम बौद्ध धर्म को कैसे आंकते हो? सवाल फिर भी वाटचू की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बुदबुदाते हुए उत्तर दिया, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए, उसके सुख और शांति के लिए बौद्ध धर्म का पथ प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्राण के उपदेश। और वाटचू बौद्ध धर्म के आठ उपदेशों की व्याख्या करने लगा। वो अपना कथन अभी समाप्त नहीं कर पाया था जब प्रधान की कुर्सी पर बैठे पैनी तिरछी आंखों वाले एक व्यक्ति ने बात काटकर कहा, भारत की विदेश नीति के बारे में तुम क्या सोचते हो? वाटचू मुस्कुराया अपनी डेढ़ दांत की मुस्कान, फिर बोला, आप भद्रजन इस संबंध में ज्यादा जानते हैं, मैं तो साधारण बौद्ध जिज्ञासु हूं, पर भारत बड़ा प्राचीन देश है। उसकी संस्कृति शांति और मानवीय सद्भावना की संस्कृति है। नेहरू के बारे में तुम क्या सोचते हो? नेहरू को मैंने तीन बार देखा है, एक बार तो उनसे बातें भी की हैं। उन पर पश्चिमी विज्ञान का प्रभाव है, परंतु प्राचीन संस्कृति के भी वो बड़े प्रशंसक हैं। उसके उत्तर सुनते ही कुछ सदस्य तो सिर हिलाने लगे, कुछ का चेहरा तमतमाने लगा, फिर तरह तरह के पैने सवाल पूछे जाने लगे। उन्होंने पाया कि जहां तक तथ्यों का और भारत के वर्तमान जीवन का सवाल है, वाटचू की जानकारी अधूरी और हास्यास्पद है। राजनीतिक दृष्टि से तो तुम शून्य हो, बौद्ध धर्म की अवधारणाओं को भी समाज शास्त्र की दृष्टि से तुम आंक नहीं सकते। न जाने वहां बैठे क्या करते रहे हो, पर हम तुम्हारी मदद करेंगे। पूछताछ घंटों तक चलती रही। पार्टी अधिकारियों ने उसे हिंदी पढ़ाने का काम दे दिया, साथ ही पेकिंग के संग्रहालय में सप्ताह में दो दिन काम करने की इजाजत भी दे दी। जब वाटचू पार्टी दफ्तर से लौटा, थका हुआ था, उसका सिर भन्ना रहा था, अपने देश में उसका दिल जम नहीं पाया था। आज वो और भी ज्यादा उखड़ा हुड़ा महसूस कर रहा था। छप्पर के नीचे लेटा तो उसे सहसा ही भारत की याद सताने लगी। उसे सारनाथ की अपनी कोठरी याद आई जिसमें दिन भर बैठा पोथी बांचा करता था। नीम का घना पेड़ याद आया जिसके नीचे कभी कभी सुस्ताया करता था। स्मृतियों की श्रृंखला लंबी होती गई। सारनाथ की कैंटीन का रसोईया याद आया जो सदा प्यार से मिलता था, सदा हाथ जोड़कर कहो भगवान कहकर उसका अभिवादन करता था। एक बार वाटचू बीमार पड़ गया तो दूसरे रोज कैंटीन का रसोईया अपने आप उसकी कोठरी में चला आया। मैं भी कहूं चीनी बाबू चाय पीने नहीं आए, दो दिन हो गए। पहले तो आते थे, दर्शन हो जाते थे, हमें खबर होती भगवान तो हम डॉक्टर बाबू को बुला लाते। मैं भी कहूं बात क्या है। फिर उसकी आंखों के सामने गंगा का तट आया जिस पर वो घंटों घूमा करता था। फिर सहसा दृश्य बदल गया और कश्मीर की झील आंखों के सामने आ गई और पीछे हिमाच्छादित पर्वत, फिर नीलम सामने आई। उसकी खुली खुली आंखें, मोतियों से झिलमिलाती दंत पंक्ति, उसका दिल बेचैन हो उठा। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे भारत की याद उसे ज्यादा परेशान करने लगी। वो जल में से बाहर फेंकी हुई मछली की तरह तड़पने लगा। सारनाथ के विहार में सवाल जवाब नहीं होने थे, जहां पड़े रहो पड़े रहो। रहने के लिए कोठरी और भोजन का प्रबंध विहार की ओर से था। यहां पर नई दृष्टि से धर्म ग्रंथों को पढ़ने और समझने का उसमें धैर्य नहीं था, जिज्ञासा भी नहीं थी। बरसों तक एक ढर्रे पर चलते रहने के कारण वो परिवर्तन से कतराता था। इस बैठक के बाद वो फिर से सकुचाने और सिमटने लगा था। कहीं कहीं पर उसे भारत सरकार विरोधी वाक्य सुनने को मिलते। सहसा वाटचू बेहद अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि जिंदा रह पाने के लिए उसे अपने लड़कपन के उस दिव्य स्वप्न में फिर से वापस लौटना होगा जब वो बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में विचरने की कल्पना करता था। उसने सहसा भारत लौटने की ठान ली। लौटना आसान नहीं था, लेकिन दूतावास से वीजा मिलने में कठिनाई नहीं हुई। लेकिन चीन की सरकार ने बहुत एतराज उठाए। वाटचू की नागरिकता का सवाल था और अनेक सवाल थे, पर भारत और चीन के संबंध अभी तक बहुत बिगड़े नहीं थे, इसलिए अंत में वाटचू को भारत लौटने की इजाजत मिल गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो भारत में ही अब जिंदगी के दिन काटेगा।